بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أهل بيت أثار عليهم السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد رضی اللہ عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی شکر ہے اس زمانے میں جب کہ دنیا پرستی میں نفس پرستی میں اور خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں مشغول ہے خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم دین کے نام پر وقت گزاریں دین کے نام پر جد و جہد کریں دین کے اندر اپنی کامیابیوں کو تلاش کریں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس امید کے ساتھ ہیں انشاءاللہ شکر گزاری کے نتیجے میں نعمتوں میں اضافہ ہوگا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کی آمد کے حوالے سے اس لیکچر کا انعقاد کیا گیا اور اس اعتبار سے چند نکات مقدمے کے طور پر عرض کروں گا اور اس کے بعد چند نکات رمضان کی مناسبت سے اس کی بنیاد اور اس کی اصالت کے اعتبار سے عرض کیے جائیں گے. مقدمتاً عرض کیا ہے کہ دین مبین اسلام ایک نظریہ ہے لیکن اس کی اساس عمل کے اندر ہے. ہم بعض نظریوں کو نظریے کے عنوان سے پڑھتے ہیں اور اگر کوئی عمل کی نہ ٹھانے عمل کی نہ سوچے صرف نظریے کے عنوان سے دیکھے تو اس کو دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی میتھمیٹکس پڑھے نہ اس لیے کہ اس نے میتھمیٹکس پر عمل کرنا ہے بلکہ اس لیے کہ میتھمیٹکس کو سیکھنا ہے, میتھمیٹکس سکھانا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی کوئی ارننگ بنانی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایم ایس میتھمیٹکس کرے یا پی ایچ ڈی کر لے اور اس لیے کر لے کہ اس نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے, یہ دوسروں کو سکھانا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں شاید اس کا بہت زیادہ معتقد نہ ہو. کوئی فزکس سیکھے فزکس سکھائے فزکس سے کمائے لیکن فزکس کا بہت زیادہ کوئی معتقد نہ ہو, کوئی اس سے پوچھے کہ اس علم کی علوم کے درمیان کیا حیثیت ہے تو کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بیکار ہے مثال کے طور پر, جبکہ ایسا نہیں ہے ہرگز. دین اسلام ایسا نہیں ہو سکتا, دین اسلام کا تعلق عمل سے ہے. لہذا اگر میں اور آپ دین سیکھیں دین سکھائیں دین کے نام پہ عزت لیں دین کے نام پہ شہرت لیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ کامیابی بھی لے لی. دین کے نام پہ کامیابی صرف اور صرف عمل سے ملتی ہے. لہذا اس سے قطع نظر کہ میں اور آپ ایک سال کے اندر کتنا بولیں گے ایک سال کے اندر کتنا پڑھیں گے ایک سال کے اندر کتنے ہمارے ماننے والے ہوں گے کتنے ہمارے چاہنے والے ہوں گے, اس سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین کی نظر میں کامیابی کا صرف ایک بات سے تعلق ہے, ماہ رمضان کے 30 دن میں آپ خود کیا کریں گے بس, اور اس کا بولنے اور سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق عمل سے. البتہ جب ہم دین اسلام کے اندر عمل کہتے ہیں تو اس کے اندر 3 حصے شامل ہوتے ہیں. جب ہم دین اسلام میں عمل کہتے ہیں تو عمل میں ہمارے اعضاء اور جوارح سے انجام پائے جانے والا جو کچھ عمل ہے وہ بھی ہے, جو کچھ میں اور آپ حواس خمسہ سے دیکھتے سنتے اور چکھتے وغیرہ ہیں یہ بھی عمل ہے, اور جو کچھ میں اور آپ سوچتے ہیں دین اسلام کے اندر یہ بھی عمل ہے. بس عمل کا دائرہ دین اسلام کے اندر بہت وسیع ہے. معمولاً دنیا کے قوانین کے اندر عمل کے دائرے میں سوچنا شامل نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ ان کی کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی. لہذا اگر آپ نے قتل کے بارے میں سوچا ہے تو یہ سوچنا جرم نہیں ہے جب تک آپ اس کے لیے پلاننگ نہ کریں, اور اگر آپ نے کسی اچھائی کے بارے میں سوچا ہے تو اس اچھائی کے اوپر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا دنیا کے اندر اگر آپ نے صرف سوچا ہے. لیکن اللہ کے نظام کے اندر سوچنا بھی عمل کا حصہ ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ آپ اور میں کیا کریں گے. زیادہ जब मामूलन हम और आपके साथ होता है, अगर कोई हम लेक्चर सुन रहे होते हैं या अटेंड कर रहे होते हैं, तो हम मामूलन उसमें से पॉइंट्स निकाल रहे होते हैं कहीं और कहने के लिए। आप ये मत कीजिएगा, वो पॉइंट्स आपको कहीं और से नसीब हो जाए ये अच्छी बात है। अभी ये सोचिएगा आपने क्या करना है। कम अज कम अपनी जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी रखिएगा जिनको आप इसलिए ना पढ़ें, इसलिए ना सुने कि आपने कहीं और देना है। हम लोग की आदत बन जाती है ना ये, क्योंकि हम लोग बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इस बोलने के लिए बोलेगा वही जिसके पास कुछ और होगा तो वो कुछ बोलेगा। तो उसके बाद ये होता है कि ये चैनल सुनना और बोलना बन जाता है, बीच में अमल बीच से निकल जाता है। तो आप इस गलती में मुब्तला हरगिज मत होइएगा, अपने अमल के लिए सोचिएगा, अपने अमल के लिए पहले मरने में प्लानिंग कीजिएगा। इसी में आपकी कामयाब तबलीग भी है, इसी में आपकी कामयाब तालीम भी है। अगर आप अमल करके दिल से कोई बात दूसरों तक पहुंचाएंगे तो साहिबान दिल तक पहुंच जाएगी, उसमें भी जो साहिब दिल नहीं होगा उस तक नहीं पहुंचेगी अगर आपने दिल से बात कही है, लेकिन कम अज कम ये होगा कि साहिब दिल तक पहुंच जाएगी और आप अल्लाह के हुजूर सुरखरु हो जाएंगे। ये पहला पहला पॉइंट है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरा पॉइंट वो हदीस है, मारूफ हदीस है जो अल्लाह के रसूल से भी मंसूब है और उनके नवासे से भी मंसूब है। फरमाया अल-फुर्सतु तमुर्रु मर्रस सहाब, फरमाया फुर्सत बादलों की तेजी से गुजर जाती है। अल-फुर्सतु तमुर्रु मर्रस सहाब, हम और आप जब भी कोई मौका अपने सामने देखें, शैतान हमें यूं समझाएगा कि ये बार बार आएगा, ये दोबारा भी आएगा, लेकिन आप अल्लाह के रसूल की उस रवायत पर अमल करते हुए हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि ये अच्छा मौका अब नहीं मालूम दोबारा कभी आएगा या नहीं आएगा। अल-फुर्सतु तमुर्रु मर्रस सहाब, और ये बहुत खूबसूरत ताबीर इमाम मासूम ने इरशाद फरमाई कि बादलों की तेजी से। बादलों की तेजी आपने बहुत मुलाहिदा फरमाई होगी, तकरीबन मेरे ख्याल में सारे बच्चे ये काम करते हैं अपने बचपने में कि वो बादलों को जरूर देखते हैं। एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि इंसान आसमान को देखता है, आसमान में बादलों को देखता है, और बादलों को जब देखता है तो उसमें खास बात यह होती है कि उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं होता। जब वो बहुत दूर से आ रहा होता है तो लगता है बहुत स्लो है, लेकिन जब वो सर के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर बहुत तेजी से निकलता है। फुर्सत को इससे तशबीह देना बहुत मीनिंगफुल है, यानी जब आप फुर्सत को देखेंगे जो आपकी तरफ आ रही होगी तो आपको लगेगा कि ये बहुत स्लो आ रही है और मुझे मेरे पास इससे फायदा उठाने का बहुत मौका होगा, लेकिन जब ये सर पे पहुंचती है, जब मौका आता है फायदा उठाने का, तो ये बहुत तेजी से निकल जाती है। तो हम लोग अपने लड़कपन में अपनी जवानी को फुर्सत समझते हैं और अपनी जवानी में अपने अधेड़पन को फुर्सत समझते हैं और अपने अधेड़पन में अपने बुढ़ापे को फुर्सत समझते हैं। और हम लोग अपने तौर पे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अभी तो मैं तालीम में हूं ना, जब मैं तालीम से फारिग हो जाऊंगा फिर मेरे पास बहुत वक्त होगा। और उसके बाद सोचता है कि अभी तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूं, जब मेरा प्रोफेशनल कैरियर जरा स्ट्रांग हो जाएगा फिर मेरे पास बहुत टाइम होगा। और जब प्रोफेशनल लाइफ की पीक पर आता है तो सोचता है कि अभी तो पीक है, अभी तो मैं कुछ हिल भी नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा मैं रिटायरमेंट की तरफ चला जाऊं फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। और जब वो रिटायरमेंट की तरफ जाता है तो फिर ये बात तो बहुत सही है कि टाइम होता है, सिर्फ ये कि तमन्ना ही नहीं होती, फिर एनर्जी नहीं होती। और उसके बाद फिर वो अफसोस करता है कि जब मेरे पास एनर्जी थी तो मैंने क्यों कुछ नहीं किया, अब जबकि मेरे पास ताकत और तमन्नाई खत्म हो गई है। तो हमेशा अपने जहन में रखिएगा अल-फुर्सतु तमुर्रु मर्रस सहाब। ये माह रमजान पिछले माह रमजान की तरह बहुत तेजी से गुजरेगा और आप यकीनन एहसास कर रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ और मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हमारी जिंदगी में मशगूल होने के साथ साथ हमारे पास टाइम का डेफिसिट बहुत शिद्दत से आ रहा है, क्योंकि हम लोग मुसलसल एक बम्बार्टमेंट के अंदर हैं। यानी पहले अगर ऐसा था कि आप दिन में एक दफा अखबार पढ़ते थे और एक ही अखबार आता था, मामला खत्म हो गया था, फिर आपके पास ऐसा हुआ कि हर चंद घंटे पर खबरें टीवी के जरिए से आने लगी, और उसके बाद ऐसा हुआ कि हर घंटे पर खबरें आने लगी, उसके बाद ऐसा हुआ कि आपके हाथ में मोबाइल है जो किसी भी वक्त ईमेल या मैसेजेस रिसीव कर रहा होता है और आपको उसको फौरन देखना होता है, तो आपका टाइम जो है वो पर्सनल टाइम खत्म होता चला जा रहा है। तो वो रिवायत और ज्यादा सादिक आती है कि फुर्सत तमुर्रु मर्रस सहाब। अब आपको ये करना होगा कि आप अपनी इस मशगूलियत की बम्बार्टमेंट में से अपने लिए वक्त कैसे निकालेंगे, कैसे वक्त निकालेंगे। اس کام کے لیے جس کو چوتھے امام کے فرمان کے مطابق اللهم صل علی محمد آل محمد وعلى كل طرف آل محمد وعلى كل دعائے مکارم الاخلاق جو سیف سجادیہ کے اندر در حقیقت اور وفاتی الجنان کے اندر بھی موجود ہے، اس میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ خدایا مجھے ایسے کاموں میں مشغول نہ فرمانا جس کے لیے تو نے مجھے خلق نہیں کیا ہے، جن کاموں کے لیے خلق کیا ہے ان میں مشغول کرنا. تو ہم لوگ ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہم خلق نہیں ہوئے، ہماری خلقت اس سے زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے کہ وہ پست کاموں کے لیے خلق کیے جائیں، لیکن ہم ان میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو آپ کیسے اپنی فرصت کو استعمال کریں گے اس تمام ہجوم کے اندر سے، اس تمام رش کے اندر سے وقت نکالیں گے ان کاموں کے لیے جن کے لیے میں اور آپ خلق کیے گئے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا کارنامہ بن جاتا ہے، آج کل یہی ایک کارنامہ. اب ان دو مقدمات کے ساتھ ہم ماہ مبارک رمضان کو کس طریقے سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر محنت کیسے کریں؟ اور ظاہر ہے جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو اپنے لیے سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس بھی 30-32 دن کا جو ٹائم ابھی باقی ہے، دو دن ماہ مبارک رمضان سے پہلے تقریباً، اور یا تین دن، اور وہ 30 دن کے جو ماہ مبارک رمضان کے ہیں یا 29 دن، اور اس میں بہت ساری مشغولیتیں بھی ہیں، یہ ساری باتیں بھی ہیں، ان کے لیے ہم اور آپ کیسے پلاننگ کر سکتے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پوائنٹس کی صورت میں کوشش کرتے ہیں، نمبر میں بیچ میں سے بھول جاؤں گا، آپ خود نمبر ڈالتے رہیے گا. پہلا پوائنٹ جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے، سب سے پہلا ایشو جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے کے 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو پہلا پوائنٹ عمل کے قابل سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے کے جو 3 دن ہیں، جس کو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ 28, 29 اور اگر اللہ نے چاہا تو 30واں دن، آج 27 تھا، اور اب یہی دعا ہو سکتی ہے کہ 3 دن مل جائیں ہمیں، اگر آج کا اٹیمپٹ نہیں کر سکیں تو 28, 29, 30 ہمیں مل جائے. تو 3 دن جو ہیں ماہ مبارک رمضان تھے پہلے کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، یہاں سے ہماری بات شروع ہو سکتی ہے. دوسری بات جو شروع ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے کم از کم اہداف کیا ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تو اللہ جانتا ہے پھر کیا کیا اہداف ہوں گے، کم سے کم اہداف کیا ہیں وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی ہم سے پوچھے ماہ مبارک رمضان کا کم سے کم ہدف کیا ہے، تو ہم کہیں گے کم سے کم ہدف جسمانی صحت ہے. کم از کم ہدف یہ ہے کہ انسان کے جسم کو ایک صحت ملے، جسم کو ایک بریک ملے، اور وہ اپنے جسم کو گویا ریفریش کر سکے، ایک اس کی سروس ہو سکے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور ہم سب کو معلوم ہے تقریباً اس وقت، اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا کنزمپشن بڑھ جاتا ہے، قطعاً ہمارا کنزمپشن کم نہیں ہوتا. میرے خیال میں کل پرسوں کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجا، سوری کسی اور اپلیکیشن کے اوپر ایک میسج بھیجا، جس کے اندر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ چل رہا تھا، کارٹون ٹائپ کا تھا، جس میں ایک ماں نے پردہ کیا ہوا تھا اور وہ بچے کو لے کے چل رہی تھی، اور وہ کوئی سپر اسٹور سے نکل رہے تھے اور اس کی ٹرالی اوپر تک ابل رہی تھی، اور بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ یعنی سوچا یہ گیا تھا کہ یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے اور یہ ٹرالی جو ہے وہ اوپر تک ابل رہی ہے. تقریباً ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی تیاری کے لیے ٹرالیز بھرنی پڑ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم از کم جسمانی صحت حاصل نہیں کر پائیں گے. اور میں کئی دفعہ اس بات کو اصرار کرتا ہوں کہ آپ انہی ایک دو دنوں کے اندر ویٹ کر لیجئے گا، اور 30 روزے گزارنے کے بعد بھی ویٹ کر لیجئے گا، تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں بڑھا کم نہیں ہوگا، اگر بڑھا نہیں موسٹ پرابلی بڑھ جاتا ہے، کم قطعاً نہیں ہوگا. اچھا کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ بہت سادہ سی وجہ ہے، پہلے آپ دن میں 3 دفعہ کھا رہے تھے، اب 4 دفعہ کھا رہے ہیں، اور پہلے کچھ کنٹرول کر کے کھا رہے تھے، بغیر کنٹرول کے کھا رہے ہیں. یہ جو جنگ ہو گئی ہے ہماری کھانے کے ساتھ، کہ چونکہ کم ٹائم میں ملے گا تو میں زیادہ بھر کے کھا لوں گا، سب سے پہلا کام تو اس جنگ کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلا کام تو یہی کر لیجئے کہ بھئی آپ نے تصور یہ تھا، یعنی اللہ کے نزدیک جو ہمیں پتا چلا اللہ کے دین کے اندر، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کنٹرول کو بڑھانا ہے. کنٹرول کو بڑھائیں گے تو ہمارے جسم کی صحت کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. پہلا کام تو یہی حاصل کرنا ہے، کم از کم یہاں سے شروع کرنا ہے. اچھا یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم یہاں سے شروع کر لیں، عجیب بات یہ ہے कि यही स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। यानी अगर आप मानवीय तरक्की चाहते हैं माह मुबारक रमजान के अंदर, तब भी यही स्टार्टिंग पॉइंट है। वो जो हमारे पास रिवायत मशहूर मारूफ रिवायत है, उनवान बसरी की रिवायत, जिसके अंदर इमाम के सहाबी इमाम तक पहुंचते हैं और पूछते हैं कि मुझे मानवीय तरक्की कैसे नसीब होगी। इमाम एक छोटी सी नसीहत करते हैं, वो इसरार करते हैं कि नहीं मुझे आप तुलानी नसीहत फरमाए, और इमाम कुछ पॉइंट्स बताते हैं, तो उसमें पहले तीन पॉइंट्स कम अज कम इमाम ने खाने के बारे में बताए थे और कहा कि तुम पेट भर के कभी मत खाना। अगर तुम्हें मानवीय तरक्की चाहिए तो पेट भर के कभी नहीं खाना। अच्छा, हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम सहरी और इफ्तार के अंदर पेट भरने से कम पे रोक ही नहीं रहे मामले को, तो कौन सी मानवीय तरक्की? फिर कहां की मानवीय तरक्की? वो इमाम मासूम फरमा रहे हैं कि अगर तुमको मानवीय तरक्की चाहिए तो पेट नहीं भरना, और माह वारा के रमजान में मानवीय तरक्की चाहिए और इसमें जो दो खाने की जगह है वहां पेट भर भर के खा रहे हैं, कहां से तरक्की मिलेगी फिर? अच्छा, मुमकिन है कोई ये सोचे कि नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएंगे। असल कोई तजर्बा नहीं बता रहा कि हम कमजोर हो जाएंगे, कतई कमजोर नहीं होंगे। लिहाजा पहला काम तो ये कर लें, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। अच्छा, आप लोग जाहिर है अपने घरों के इंचार्ज भी हैं, कम से कम कुकिंग के इंचार्ज तो हैं ही, बाकी उनके इंचार्ज हैं या नहीं है, तो कुकिंग के इंचार्ज होने के नाते आपके घर वालों की सेहत आपके हाथ में है, चाहे उनके तकाजे कुछ भी होते रहे, कहीं कम से कम कंट्रोल आपके हाथ में है, तो थोड़ा सा मॉनिटर कर लें कि वो लोग इसकी वजह से बीमारी में मुब्तला ना हो जाए। हमारे एक उस्ताद कहते थे कि तुम अगर कब्रिस्तान जाओ और वहां मरने वालों की इस्लामिक डेट्स लिखी हो तो ज्यादातर शव्वाल में मरते हैं लोग, और माह शव्वाल में मरते इसीलिए हैं कि माह रमजान का बदला भी शव्वाल से निकालते हैं और फिर वहां पे मौतें वाकई होना शुरू हो जाती हैं। तो कंट्रोल करें थोड़ा सा, अपने ऊपर भी रहम करें, इन पर भी रहम करें, और शेड्यूल कुछ ऐसा बनाएं कि जिंदगी अच्छी गुजरे, खाएं अच्छा खाएं लेकिन मिकदार में कम खाएं, मिकदार में कम खाएं, ताकि सेहत भी रहे, आपकी मानवीय तरक्की के लिए मौका फराहम हो जाए और आप जो हैं वो कम अज कम पहला स्टेप सही ले लें। मुझे डर यह है कि ये जो पहला स्टेप है ये हम बहुत गलत ले रहे हैं और उसकी वजह से फिर आखिर तक माह मुबारक रमजान हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं देता। आपने ये पहला स्टेप सही लेना है, ये तो कम अज कम फायदा हो गया। स्पिरिट क्या है माह मुबारक रमजान की? मैं वो लतीफा दोबारा नहीं दोहराऊंगा जो माह जो दुबई में एक दफा मैंने देखा, एक मेले के ऊपर लिखा हुआ था द ट्रू स्पिरिट ऑफ रमजान, मेले के ऊपर लिखा हुआ था, मेले का एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन था द ट्रू स्पिरिट ऑफ रमजान। सही, स्पिरिट क्या है माह मुबारक रमजान की? एक वर्ड के अंदर जो मैं हमेशा कहता हूं, अभी तक जो मुझे दीन इस्लाम के अंदर एक लफ्ज सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आया है दीन इस्लाम में आगे बढ़ने के लिए, माह मुबारक रमजान की ट्रू स्पिरिट भी वही है, वो है कंट्रोल। ये पहला लफ्ज है, अहम तरीन लफ्ज है जो दीन मुबारक के अंदर तरक्की हासिल करने का अहम तरीन लफ्ज समझ में आया अभी तक मुझे, कंट्रोल। पूरे माह मुबारक रमजान के अंदर शुरू से आखिर तक जो चीज आपका हदफ बन जाए आपने कंट्रोल करना है। इस कंट्रोल को आप मुख्तलिफ तरीकों से इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसको मुख्तलिफ तरीके से अमल में लेकर आएंगे। पहला कंट्रोल जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया वो गजा के सिलसिले में था कि गजा के सिलसिले में आप कंट्रोल को लेकर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इसी कंट्रोल को जब आप यहां पर हासिल करेंगे तो मुख्तलिफ जगहों पर खुद ब खुद नसीब होगा। कंट्रोल के सिलसिले में एक कहना चाहिए फिलोसफी टाइप की आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं जो दुनिया में मुसलमान गैर मुसलमान सब कबूल करते हैं। छोटी सी एक हमारे बेनिफिट में है एक चीज कंट्रोल के मामले में। कंट्रोल ऐसा है, बात चीजें ऐसी होती हैं जिनको जितना इस्तेमाल करो उनकी आदत बढ़ जाती है, उनकी हिर्स बढ़ जाती है। तो दुनिया की मिसाल रिवायात के अंदर नमकीन पानी से दी गई है। आपको मालूम है समंदर का पानी नमकीन होता है, अगर कोई इसको पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझती है बल्कि उसकी प्यास में इजाफा होता है, और वो ये समझ रहा होता है कि मेरी प्यास बुझ रही है। तो नमकीन पानी से प्यास बुझाने के मुकाबले में बहुत बेहतर है कि इंसान प्यासा रहे, क्योंकि अगर आपने नमकीन पानी से प्यास बुझाई तो आपकी प्यास बढ़ जाएगी, और अगर पहले मौत दो दिन पे आती हो तो अब मौत एक दिन पे आएगी। तो नमकीन पानी से प्यास बुझाने से कहीं बेहतर है कि इंसान प्यासा रहे। हमारे और आपके अंदर अल्लाह ने एक तरक्की के लिए ख्वाहिश डाली है, अगर तरक्की की उस ख्वाहिश को हमने दुनिया से पूरा करना है तो फिर प्यासा रहना बेहतर है, फिर प्यासा रहना बेहतर है, फिर बेदुनिया रहना बेहतर है, उसकी वजह यह है कि दुनिया से अगर आपने उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की तो दुनिया हरीस बनाती है और ये प्यास कभी नहीं बुझने देती, इसकी प्यास हमेशा बढ़ती है बिल्कुल नमकीन पानी की तरह। तो आप अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए एक फलसफे के ऊपर ध्यान में रखिएगा। कंट्रोल में अच्छी बात यह है, अगर आप छोटी छोटी चीजों में भी कंट्रोल इंप्लीमेंट करें तो आपका कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका कंट्रोल बढ़ता है। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए आपने पानी पीने के लिए कंट्रोल अपने ऊपर एक लगा लिया है और वो कंट्रोल ये है कि आप जब भी पानी पियेंगे 3 घूंट में पियेंगे, सीधे हाथ से पियेंगे, रात को पियेंगे तो बैठ के पियेंगे, आपने कुछ कंट्रोल लगा लिए। ये जो पानी के मामले में आप कंट्रोल करेंगे, आपका अपनी अपनी बॉडी के ऊपर अपने अपने वजूद के ऊपर कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे, इसका फायदा आपको दूसरी जगहों पर खुद ब खुद होगा, दूसरी जगहों पर कंट्रोल आपका खुद ब खुद बढ़ेगा। तो मसलन अगर आप नमाज के लिए कंट्रोल करेंगे कि आप टाइम पे नमाज पढ़ें तो दूसरी जगहों में टाइम पर टाइम को कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप माह मुबारक रमजान में खाने पीने पर कंट्रोल करेंगे तो नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल किसी चीज का ना करें तो क्या होता है, तो फिर कंट्रोल और खत्म होना शुरू हो जाता है और तेजी से खत्म होता है। कंट्रोल एक अजीब फिनोमिना है, अगर आप कंट्रोल करना शुरू करें तो कंट्रोल तेजी से बढ़ता है और अगर कंट्रोल लूज करना शुरू करें तो बहुत तेजी से लूज होता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं माह मुबारक रमजान में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम खाने के मामले में कंट्रोल करने के बजाय कंट्रोल लूज कर रहे हैं। जब हम खाने के मामले में कंट्रोल लूज करते हैं तो मानवियात के अंदर हमारा कंट्रोल खुद ब खुद और खत्म होना शुरू हो जाता है और हम नाउज़ बिल्लाह ताला उस कामयाबी से दूर रह जाते हैं जिसके लिए खुदा तआला ने माह मुबारक रमजान दिया था। तो जो स्प्रिट बनेगी माह मुबारक रमजान की वो ये कि आप कंट्रोल करेंगे, उस कंट्रोल को आप कहां से इंप्लीमेंट करेंगे, खाने पीने से शुरू करेंगे, खाने पीने से शुरू करेंगे और कुछ चीजों के ऊपर अपने कंट्रोल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आप अपने कंट्रोल को बढ़ाते चले गए आपकी मानवीय तरक्की खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप कंट्रोल को खाने पीने में तो मैंने अर्ज कर दिया, दूसरी जगहों पे कंट्रोल को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक पॉइंट अर्ज करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अपने आप से एक सवाल करें कि इतनी जिंदगी में और आप गुजार चुके हैं, इतनी जिंदगी गुजारने वाले हैं, कोई अच्छा अमल है जिसकी ख्वाहिश आपके दिल में हो और आपने ना किया हो? कोई ऐसा अच्छा अमल जिसकी ख्वाहिश आपके दिल में हो कि काश मैंने ये किया होता और ना किया हो? क्या आप वो काम माह मुबारक के रमजान में शुरू कर सकते हैं? यहां से आपका कंट्रोल बढ़ना शुरू होगा। मसलन फर्ज फरमाइए आपके दिल में ख्वाहिश थी कि काश, मिसाल के तौर पर दुआए अबू हमजा सुमाली सुकून से पढ़ते कभी, क्योंकि हम लोग शबों में पढ़ते हैं, शबों में लोग तेजी तेजी से पढ़ते हैं, मजा नहीं आता इस तरह से। आप मिसाल के तौर पर तय कर लीजिए कि माह मुबारक रमजान के अंदर मैं किसी एक आम रात में जब तेजी ना हो, जल्दी ना हो, दुआए अबू हमजा को सुकून से पढ़ूं। ऐसी अच्छाइयां जिसको आपने सोचा हुआ है कि करें लेकिन अभी तक करने का मौका आपको नहीं मिला है किसी भी वजह से, और अच्छा ये है कि इस मामले में किसी आदत का इंतखाब करें, कोई ऐसी अच्छी आदत जो आप डालना चाहते थे अब तक नहीं डली है, इस महीने को इस्तेमाल करके आप डाल लें। 2-3 अच्छी आदतें आपकी खिदमत में इबादतों से अर्ज कर देता हूं। मिसाल के तौर पर फर्ज फरमाए नमाज गुफैला नहीं पढ़ते थे, चाहते हैं कि आदत पड़ जाए, इस महीने में डालना। अगर मुझसे कोई पूछे इंसान की जिंदगी में आम इंसान मौजज़ा दिखा सकता है क्या, तो मैं कहूंगा दिखा सकता है अगर नमाज को फैला पाबंदी से पढ़। यहां तक बात जा सकती है, आम इंसान भी ये काम कर सकता है। ये अजीब मौला का तोहफा है हमारे पास, इंतहाई मुअस्सर, इंतहाई मुस्तनद। यानी बाज इबादत ऐसी होती हैं जिनके इस्तनाद पे हम शक करते हैं लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं इस उम्मीद पे कि इंशाअल्लाह खुदा पूरा करेगा। हमारे पास एक रिवायत है, वो रिवायत मुस्तनद है और उस मुस्तनद रिवायत में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को मेरे बारे में ये खबर मिले कि मैंने कोई सवाब का वादा किया है اور وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کام کر لے اور میں نے نہ کیا ہو, تب بھی میں قیامت کے دن وہ ثواب دلواؤں گا. صحیح اللہ کے رسول نے فرمایا, اور یہ روایت مستند ہے ہمارے پاس. اللہ صلی علی محمد وعدل. البتہ اس میں عقل اور منطق کو بہرحال بیچ میں کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. مثلا کوئی یہ کہے میں نے سنا ہے فلاں اگر دعا پڑھو تو کسی کو قتل بھی کر دو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا, نہیں ایسے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی شریعت توڑنے کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمائیں گے. عقل اور منطق ہمارے پاس ساتھ رہنی چاہیے. مثلا جو صحیح مثال ہو سکتی ہے, مثلا فرض فرمائیں کوئی یہ سنے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی سورہ دہر کو سورہ انسان کو ہر روز صبح پڑھے تو ثواب یہ ہے. اس نے کوئی روایت پڑھ لی اور بعد میں قیامت کے دن پتا چلا کہ روایت صحیح نہیں تھی, اس نے روایت پڑھی روایت پہ عمل کیا اس امید پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, قیامت کے دن پتا چلا کہ نہیں یہ سب یہ بات صحیح نہیں تھی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر اس نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کیا ہے تو میں اس کو ثواب دلواؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن عقل و منطق میں نے کہا عقل و منطق ساتھ رہنی چاہیے, کسی کا نقصان نہیں کروائے, دین خدا کو پامال کرنے کی کوئی بات نہ ہو, یہ ساری باتیں. تو کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جس میں شک ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ہم اس روایت پر انحصار کرتے ہوئے اس روایت کو ٹائٹل دیتے ہیں من بلغا, جس کو جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں من بلغا, لیکن ظاہر ہے جب عربی میں پڑھیں گے تو من بلغا کہیں گے. اس روایت کا ٹائٹل ہے من بلغا, یعنی جس تک کوئی بات پہنچے کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور وہ عمل کرے تو میں ثواب دلاؤں گا. تو اگر روایت میں شک ہوتا ہے لیکن من بلغا کی روایت کو ساتھ لگاتے ہوئے ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا, نماز غفلہ میں شک نہیں ہے, مستند ہے, یہ کوئی شک کی نماز نہیں ہے, یہ یقین کے ساتھ اہل بیت کی نماز ہے اور اس کے اوپر اصرار ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. اب کیوں محروم رہے ہیں اس بات سے؟ اور اب یہ دوسرا معاملہ بچکانا بات کہ بھائی دیر بھی کتنی لگنی ہے, 5 منٹ اس زیادہ تھوڑی لگنے, 5 منٹ 10 منٹ لگیں اس زیادہ نہیں لگیں, تو کیوں آپ اپنے آپ کو محروم کریں؟ اچھا اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قضا نہیں کرنی ہے, یعنی مثال کے طور پر کوئی دن ایسا نہیں گزرے کہ جب آپ نے نہ پڑھی ہو. ہاں ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتا ہے انسان مغرب عشاء تھوڑی دیر سے پڑھ رہا ہے, تھوڑی دیر سے بھی پڑھ رہا ہے تب بھی مغرب عشاء کے درمیان غفیلہ ضرور پڑھ لے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی جماعت کے اندر تھے, مغرب ہوئی فوراً جماعت عشاء کی شروع ہو گئی, اب آپ غفیلہ نہیں پڑھ سکے تو آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں. کسی بھی طرح سے کریں آپ نے غفیلہ پڑھنی ضرور ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا وقت ہے, اگر یہ عادت آپ کی نہیں پڑی تھی آپ اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیے اور یہ عادت اپنے اندر ایجاد فرما لیجیے. یا مثلا آپ نے سوچا تھا کہ آپ ہر روز صبح کو مولا کی وہ زیارت پڑھیں گے جس کو ہم دعا عہد تعبیر کرتے ہیں, اب تک خدا نہ کرے نصیب نہیں ہوا تھا, اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا لیجیے, اس میں اپنی عادت بنا لیجیے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں اسے شروع کروں. یا اسی طرح بہت ساری عادتیں ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں, زیارت عاشورہ کی عادت کرنا چاہے کوئی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ ماہ مبارک رمضان دوسرے پوائنٹ میں کنٹرول کے اعتبار سے آپ کو اس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ اپنا کنٹرول بڑھائیں کھانے پینے سے, اپنا کنٹرول امپلیمنٹ کریں اچھے کاموں کو شروع کرنے کے لیے. اگر آپ ان دو میں اپنا کنٹرول امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا کنٹرول اور زیادہ بہتر ہو جائے گا, آپ کی معنویات بڑھیں گی. کنٹرول کو امپلیمنٹ کرنے میں تیسری جگہ جو بہت فائدہ دے سکتی ہے, جیسے ہم نے اچھے ثواب کے لیے کہا اچھے کام کے لیے کہا, اس کو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. فرض فرمائیے آپ کو اور مجھے خدا توفیق دے, خدا ہم پہ رحم کرے, ہمیں اپنی خرابی پتہ چل جائے, یہ بڑی مصیبت کا کام ہے. ہم کتنا ہی متوازے کیوں نہ ہوں, ہم کتنا ہی منکسر المزاج کیوں نہ ہوں, بالاخر ایک انانیت ہمارے اندر ہوتی ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑتی, بہت مصیبت کا کام ہے. انسان اپنی ذات سے اپنے نفس کی جڑوں سے دنیا پرستی نکال دے اور انانیت نکال دے, یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر آیت اللہ دستغیر جیسے لوگ 40-40 سال محنت کرتے ہیں اس کے اوپر تب کہیں جا کے کامیاب ہوتے ہیں, میرا اور آپ کا تو آپ حساب کتاب سمجھ لیں گے کیا ہے. پھر ہماری وجود کی جڑوں میں اور بہت ساروں میں ظاہر میں بھی हम समझ रहे हैं कि जड़ों में नहीं, हत्ता जाहिर तक दुनिया परस्ती घुसी भी होती है, अनानियत घुसी पड़ी होती है। अक्सर हम में से इंसानों को वो अनानियत और दुनिया परस्ती नजर नहीं आती। इसका एक अजीब और गरीब कैमोफ्लाज है कि हमें सब कुछ नजर आता है, ये नजर नहीं आता। और हमें बहुत सारे गुनाह जो छोटे होते हैं इसके मुकाबले में, वो नजर आ जाते हैं। मसलन खुदा न करे नाउज़ुबिल्लाह, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो ये गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है, वो नजर आ जाएगा, आराम से नजर आ जाएगा भाई नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, फौरन समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो अखलाकी गुनाह होते हैं जिनका ताल्लुक दर हकीकत अकायद में शक से है, अगर इंसान अकायद में मजबूत हो तो अखलाकी गुनाहों में मुबतला नहीं होगा, ये अखलाकी गुनाह ये नजर नहीं आते। फिकी गुनाह नजर आते हैं, अखलाकी गुनाह नजर नहीं आते। मसलन कोई इंसान झूठ बोलेगा तो मालूम है दो दो चार की तरह झूठ बोल रहा है, पता चल जाएगा। लेकिन दुनिया परस्ती करे, अनानियत दिखाए, शायद दूसरों को तो नजर आ जाएगा, अपने आप को नजर नहीं आता। एक और हमारे साथ मुश्किल है, हमारे माशरे में नसीहत करने वाले शायद मजाक में कहूंगा मर गए, नहीं मिलते। नसीहत करने वाले नहीं मिलते जिनकी नसीहत पर एतमाद भी हो, यहां इसके नसीहत पर एतमाद। अलबत्ते मैं मजाक में कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी माशरे के अंदर नसीहत करने वाले मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, हमेशा होंगे। लेकिन हमें नजर नहीं आते तो हम कह रहे हैं कि हम मर गए जैसे। लेकिन नसीहत करने वाले कम हो गए, बहुत कम हो गए, इसकी वजह से माशरे में इस्लाह का अमल तकरीबन फंस गया है, जैसे रुक गया है, नसीहत करने वाले नहीं रहे। और नसीहत न सुने इंसान, कोई इंसान बेनियाज नहीं है नसीहत से। हमारे पास रिवायत मौजूद है मासूम की, फरमाया कोई इंसान नसीहत करने वाले से बेनियाज नहीं हो सकता। लिहाजा आप यकीन फरमाइए मराज तकलीद भी बाद औकात किसी के पास नसीहत के लिए जाते हैं, क्योंकि मासूम तो नहीं है ना, कितना ही बड़ा मंजिलत हो मरतबा हो। तो मशहूर मारूफ था आयतुल्लाह अहमदी म्यांजी थे, एक आयतुल्लाह अहमदी म्यांजी कौम का एक बाजार था, वो दीनदारी के एतबार से अजीब जगह थी, वहां मस्जिद थी उनकी, वहां पे दरस अखलाक फरमाते थे, उसमें मराज तकलीद आती थी। यानी एक दफा मुझे याद है एक जलसे के अंदर शायद तीन मराज तकलीद बैठे हुए थे। तो हर आदमी को नसीहत करने वाला चाहिए, और नसीहत करने वाले कम रह गए, या वो जो नसीहत करने वाले उन पर हमारा एतमाद खत्म हो गया किसी भी वजह से। अब क्या हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन ये बताए कि हम गलती क्या कर रहे हैं, कुछ समझाने वाला नहीं है हमें कि भाई हम गलत क्या कर रहे हैं। अच्छा ये खुद एक गलती है कि हमारे पास कुछ समझाने वाला नहीं है। लेकिन इसलिए इस खातिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, माशरे के इस रवैये को देखते हुए कि कोई समझाने वाला नहीं है कि इंसान गलती क्या कर रहा है, तो अगर किसी को नसीब हो जाए कि उसको ये पता चल जाए कि मेरी गलती क्या है, तो ये खुशनसीब आदमी है, इसको चाहिए सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाए कि मुझे गलती पता चल गई, उसके बाद उस गलती से लड़ना शुरू कर दे कि भाई कंफर्म ये मेरी गलती है, मुझे लड़ना है। आप कपड़े के मामले में कर सकते हैं कि कपड़े पे दाग धब्बा हो, कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद अगर दाग धब्बा आ जाए उस कपड़े को डिस्कार्ड कर दें, उस कपड़े को रिजेक्ट कर दें। लेकिन मुतमैन रहिएगा, जितना भी आपका इत्मीनान आपके दिल तक आ सके, आपकी और मेरी रूह पर जो धब्बे हैं ये मिटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, इन्होंने मिटना है। किस तरह मिटना है? या तो हमने दुनिया में मिटा लिया अपनी मेहनत करके, या ये बरजख में मिटेंगे पिट पिट के, या ये आखरत में मिटेंगे जल जल के, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये जितने भी धब्बे हमारी रूह पर हैं इन सब ने सही होना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारे पास वो जुमला मौजूद है आय करीमा की सूरत में, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब ने खुदा की तरफ पलटना है, तो आप ये जान रखिए कि हम सब ने नजिस और नापाक खुदा की तरफ नहीं पलटना है, हमने पाक और साफ होकर खुदा की तरफ पलटना है। और अगर यहां पाक और साफ नहीं हुए, आगे पाको साफ होना है, सिर्फ एक आसानी है, यहां पाको साफ अपने इरादे से होंगे, कम मेहनत से हो जाएंगे, वहां पाको साफ सजा की सूरत में होंगे और फिर अल्लाह के निजाम के जरिए से होंगे। माह मुबारक रमजान अच्छा मौका है, अगर आपको अपनी बुराई नहीं पता है तो जस्तजू करेंगे बुराई पता चल जाए, अगर बुराई पता है तो बुराई से लड़ना शुरू कर दें। अपने ऊपर ये जुल्म मत कीजिएगा कि इसको कब्र के लिए उठा के रख ले। शैतान हमेशा यही समझाएगा, इसे कब्र के लिए रख लो, आगे ले चलो, ये वो बोझ नहीं है जो आगे बढ़ाया जा सके, इसको यहीं पे निपटना है। तो आप, मैं इतना इसरार इस बात पे कर रहा हूं, अगर आप सर्च करूंगा तो मुझे भी शर्म आएगी कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूं कि बिलाखिर ये बोझ आगे ले जाने वाले नहीं है, ये बोझ यहीं निपटाने वाले हैं, इनके ऊपर यहीं मेहनत होनी है। तो अगर मिसाल के तौर पर खुदा ने मुझे तौफीक दी और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नफ्स परस्त इंसान हूं, या मसलन मैं दुनिया परस्त इंसान हूं, मेरे अंदर एक अनानियत है, मेरे अंदर एक तकब्बुर है, मेरे अंदर एक बुराई है, तो बेहतर यह है कि इसको आखिरत पे मत उठाऊं, इस पे बरजख पे मत रखूं, इसको यहीं निपटा लूं। उसके लिए आप अपने नफ्स से कुछ ना कुछ जिद्दोजहद शुरू कर दें। शायद बहुत सारी बीमारियों का एक अजीब इलाज है, सबके लिए मुश्किल है, हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत अजीब इलाज है, और वो है खामोशी। ये बहुत अजीब इलाज है बहुत सारी बीमारियों का, नफ्स परस्ती का, अनानियत का, बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत अच्छा इलाज खामोशी है। खासकर ऐसी जगह पे खामोशी जहां आप चैलेंज किए जा रहे हैं, आप खामोश हो जाइए। किसी चैलेंज को दुनिया की वजह से बर्दाश्त मत कीजिएगा, कभी किसी चैलेंज को दुनिया की खातिर मत उठाएं। यानी मिसाल के तौर पर आपने कोई काम करना है, सामने वाले ने भी कोई काम करना है, उसकी जात से भी वही फायदा होगा जो आपकी जात से होगा, निहायत ये कि अगर आप करेंगे तो आपकी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। इस चैलेंज को अपने ऊपर मत लें, दूसरे के हवाले करें, दुनिया की खातिर कोई चैलेंज मत लें। बदकिस्मती से हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस दुनिया की खातिर लेते हैं आखरत का बहाना करके, अल्लाह के नाम पर। तो इससे कहीं लड़ने की कोशिश कर लें। खामोशी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। यानी मिसाल के तौर पर बहुत सादा सी जो मैं मिसाल अभी मिसाल में आती है वो ये कि आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग बात कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी बात है जिसको अगर आप कहें तो आपकी शख्सियत बहुत मानी जाएगी यहां पर, क्या आप खामोश रह सकते हैं? यहां कोशिश करें खामोश रह जाइए ताकि आपको ये जो अपनी शख्सियत मनवाने का मौका मिल रहा है इसको आप इस्तेमाल मत करें। अच्छा, आप कहेंगे अगर वो लोग बातिल पे चल रहे हैं और मैं बोलूं तो हक पे आ जाएंगे, तो क्या मैं ना बोलूं तो फिर वो बातिल पे चले जाएंगे? ऐसे मौके पर कोशिश करें कोई ये हक की बात किसी और की जबान से जारी हो जाए, जरूरी है कि मेरी और आपकी जबान से जारी हो, यह हक की बात किसी और को समझा दें। या मिसाल के तौर पर यही बात आपको कहनी है, अल्लामा तबतबाई बहुत मुतवाज़े इंसान थे, अल्लामा तबतबाई मुनफरिद उलमा में से एक है, वो अजीबोगरीब मकाम था उनका। तफसीर अल-मीज़ान उर्दू में सारी जिल्दें तर्जुमा नहीं हुई हैं, थोड़ी सी तर्जुमा हुई, मेरे ख्याल में एक या दो जिल्द फकत तर्जुमा हुई है। तो लोग अल्लामा तबतबाई के मकाम और मंजिलत को इल्मी एतबार से शायद नहीं पहचान पा रहे। यहाँ पर अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबतबाई जो तफसीर अल-मीज़ान के मुसन्निफ थे, तफसीर अल-मीज़ान उस पाए की तफसीर है जिसके लिए शेख मुतहरी फरमाते हैं कि शायद तारीख इस्लाम में इससे बेहतर तफसीर नहीं लिखी गई। और उस तफसीर में उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत यूनिक कही हैं, यानी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो दूसरों ने नहीं कही हैं, लेकिन एक जगह भी अल्लामा तबतबाई ने ऐसे नहीं कहा कि लगे जैसे इन्होंने पहली दफा कहा, नहीं, हमेशा मुतवाजाना मुनकसराना अंदाज है उनका। वो क्या करते हैं, वो सारे उलमा के अखबार को नकल करते हैं, बयान करते हैं, सबको बयान करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर एतराज करते हुए गुजरते हैं कि इसमें यह मसला रह जाता है, लेकिन दूसरे आलम ने जो बात कही वो ज्यादा बेहतर लग रही है, फिर उसके अंदर बताएंगे इसमें यह प्रॉब्लम है, उन्होंने बात जो कही उसमें यह मसला नहीं है लेकिन इसमें यह मसला है, और उसके बाद जब आखिरी बात अपनी करने लगते हैं जो अब तक किसी ने नहीं कही है, तो वो कभी ये नहीं दिखाते जैसे मैं वो बात कर रहा हूं कि जो आज तक किसी ने नहीं कही है। तो वो इस तरह से कहेंगे कि ये, लेकिन वो बात जो फना आलिम ने कही है अगर उसी को हम कबूल करें और उसमें जरा सी तब्दीली कर लें तो फिर बात सही है। सही है, नहीं कह रहे मैंने ईजाद किया है, हमेशा क्या कहते हैं, फना आलिम की बात सही है जरा सी अगर ये तब्दीली इसके अंदर कर ली जाए, ठीक है, जबकि वो बात यूनिक होती है, नई बात होती है। ये उनका तवाज़ो है, उनकी इनकिसारी है। अच्छा, आप खुद तसव्वुर फरमाएं हम में ये इनकिसारी है क्या? हम जहां कहीं दूसरे की भी बात बताने लगते हैं तो नहीं बताते दूसरे से हमने सीखी है, हम कहते हैं मेरी समझ में ये आता है, अब ये वही जो आपकी समझ में आया ये वही थोड़ी उतरी है, आपने भी कहीं से सीखा है ना, आप इसके ऊपर इसरार फरमाइएगा। अब जितनी बातें बयान फरमाएं कोशिश करें ये बताएं कि आपने कहां से सीखा था, और आप देखेंगे आपके नफ्स के लिए बादोकात इसको बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने जिससे सीखा वो आपकी क्लास फेलो है, आपके लिए आसान नहीं होगा कि आप ये बताएं कि ये जो अच्छी बात है ना मैंने अपनी क्लास फेलो से सीखी है या अपने जूनियर से सीखी है, आपके लिए आसान नहीं होता, ये मेरे लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर लें कि या तो आप खामोश रहें दूसरों को आगे बढ़ने दीजिए, या अगर आप समझ रहे हैं हक और बातिल का मामला है तो आप अपनी बात कहें दूसरे के रेफरेंस में कहें, ये बताकर कहें आपने कहां से सीखा, और हत्तल इम्कान कोशिश करें इसको कोई बड़ी बात मत दिखाएं कि आपने कोई बड़ी बात कही है, हत्तल इम्कान कोशिश करें उस तरह से बयान करें कि जिस तरह से लगे कि ये बात सब कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, या मसलन ये बातें और जगहों के ऊपर बहुत दफा हुई नहीं है, अब इसके अंदाज को आप खुद तय कर लेंगे किस तरह से करना चाहिए। लेकिन जो इस कंट्रोल के चैप्टर में आखिरी बात मैंने आपकी कही, मैं से नंबर निकल जाता है इससे मैं नहीं कहूंगा तीसरी या चौथी बात, वो ये है कि आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है अपनी किसी बुराई से लड़ने का, और बुराइयों में से अहम तरीन बुराइयां नफ्स परस्ती और दुनिया परस्ती है, इस नफ्स परस्ती और दुनिया परस्ती से लड़ने में इलाजों में से एक इलाज खामोशी है, आप हत्तर इम्कान खामोशी इख्तियार फरमाइए, और अगर खामोशी मुमकिन नहीं है तो फिर उसके मुकाबले में बोलने के तरीके मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि बोलने का अंदाज कैसा हो सकता है जिससे आपकी जिंदगी आसान होगी। अच्छा अब यहां पे एक मुश्किल है, हमारे माशरे के अंदर खासकर वो लोग जिनको अभी इतना ज्यादा कबूल नहीं किया गया है उन लोगों के सामने ये इशू आता है कि अगर हम इजहार ना करें अपनी ताकत का और अपनी सलाहियत का तो लोग मानते भी नहीं है, ये हमारे माशरे के अंदर एक अजीब इशू है। मसलन जो लोग दीन के नाम पे काम कर रहे हैं या दीन के अलावा भी जो काम कर रहे हैं वो दो ग्रुप में हम तकसीम कर सकते हैं, एक वो है जिनकी कैलिबर को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मान चुके हैं ठीक है भाई ये लोग एक कैलिबर के ऊपर हैं। अच्छा कुछ ग्रुप वो है जिसको अभी नहीं माना गया है, शायद उसके अंदर सलाहियतें बेइंतहा हैं लेकिन उसे अभी नहीं माना गया है, वो जिसकी सलाहियत को मान लिया गया है अब उसको इजहार करने की जरूरत है कि मेरे अंदर सलाहियत है, ये उसे क्या जरूरत है, पहले से मान लिया है, शैतान इसको भी बरगलाता है कि नहीं फिर तुम भी इजहार करो, उसको ग्राउंड भी मिल जाता है, लोग वैसे ही उसके मुतअक्किद होते हैं, वो चार बातें और कहता है ताकि लोग और मुतअक्किद हो जाए, ये तो कोई जरूरत ही नहीं हुई, पहले से आपको मान लिया गया है अब आपको क्या जरूरत है बिला जमे आप नफ्स परस्ती करके अपनी आखरत को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा एक कैटेगरी वो है जिसकी सलाहियतों को अभी नहीं माना गया है, सही है, उसके सामने शैतान ये कहता है जब तक बोलोगे नहीं तुम्हें लोग पहचानेंगे कैसे, तो बोलो जरा कुछ दिखाओ अपनी सलाहियत बताओ ये फलाने ये गलती की फलाने ये गलती की, देखो मैं जो बात कह रहा हूं नई बात है, ये इस तरह की बात शैतान समझाता है। इससे लड़ने का आसान तरीन तरीका यह है कि अपने जहन में हमेशा वो आय करीमा रखिएगा, इसको अपने जहन में छपा दें कहीं पे छाप दें कि रह जाए, इन्नल इज्जता लिल्लाह जमीआ, इज्जत बस अल्लाह के पास है सारी की सारी इज्जत, इज्जत खुदा के लिए, اللهم صل على محمد وآل محمد إن العزة لله وللمؤمنين وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون, عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے صاحبان ایمان کے لیے اور منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے, آپ اس بات کو سمجھ لیں عزت دینے والا خدا ہے और इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में, हम में से किसको इज्जत नहीं चाहिए, हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें मुझे दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए क्या मतलब, यानी दौलत नहीं चाहिए, मुमकिन है कुछ लोग हों जो कहें मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुमकिन है कुछ लोग हों जो कहें मुझे शोहरत नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछेगा इज्जत भी नहीं चाहिए, अब इज्जत सब कुछ चाहिए, इज्जत वो चीज है जो सबको चाहिए, चाहे दौलत ना मिले शोहरत ना मिले लेकिन कम से कम इज्जत एहतराम तो मिले कम से कम, इस बात को जहन में रखें इज्जत अल्लाह के पास है, आप क्यों शैतान के हाथों इज्जत लेना चाहेंगे, शैतान इज्जत नहीं देगा, शैतान बुराई देगा, आपको किसी ऐसी जगह पे मशहूर करा देगा जहां से बदनामी आएगी। और वो कानून जहन में रखिएगा, मैं उसको बहुत दोहराता हूँ लिहाजा मजीद नहीं दोहराऊंगा, अक्सर बातों को दोहराना पड़ता है। वो ये है कि यानी अपने खातिर दोहराना पड़ता है कि आप अल्लाह की खातिर किसी चीज को पामाल करेंगे वहां से बेइज्जती आएगी। अल्लाह की खातिर सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, मैं जुमला तेजी में गलत दोहरा गया, गलत बोल गया। अल्लाह के मुकाबले में यानी खुदा का हुक्म था, उसका मुकाबला, उसके मुकाबले में खिलाफ में गए और खिलाफ में जाकर किसी चीज को आपने ले लिया, अब यहां से बेइज्जती आएगी। अल्लाह की इताअत में किसी चीज को पामाल करेंगे यानी खुदा ने कहा इसे छोड़ दो, आपने छोड़ दिया, खुदा वो चीज आपको दिलवा देगा, उससे बेहतर भी दिलवाएगा। ये एक अजीब उसूल है। जब भी कभी खुदा के मुकाबले में आएंगे बेइज्जती आएगी, इज्जत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि इज्जत खुदा के पास है। अगर खुदा का मुकाबला कर लिया आपने, नाऊज़ बिल्लाह ताला मैंने और आपने, तो फिर कहां से इज्जत मिल सकती है? तो इज्जत खुदा के हाथ में है। अगर आपका वो स्टेज है जब अल्लाह ने, लोगों ने आपकी सलाहियत को अभी नहीं माना है, तो आप गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करें। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देने वाला खुदा मुताल है, वो आपको इज्जत दिलवाएगा अगर इज्जत मिलना आपका हक होगा। ठीक है, ये चंद पॉइंट्स हुए। एक दो पॉइंट्स और समझ में आते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कुछ आपके लिए क्वेश्चन आंसर का कोई चैप्टर रह जाए, ताकि आप कोई बात करना चाहें तो वो कर लें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद चीजों के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके ऊपर काम करने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। यानी अगर आप दीन इस्लाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कोई तरक्की का दरवाजा खोलना चाहते हैं, माशरे के अंदर खिदमत करना चाहते हैं, दीन के नाम पर कुछ मेहनत करना चाहते हैं, चंद कामों को करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। उन कामों में से एक काम यह है कि अपनी जिंदगी को मस्नूई कामयाबियों में मत फंसाएं, मस्नूयात में मत फंसाएं। यानी मिसाल के तौर पर ऐसी चीजों का इजहार करें जो मुझमें और आप में नहीं है, ये मस्नूई कामयाबी है। इस मस्नूई कामयाबी के अंदर अपने आप को मुब्तला मत करें। सही मीनिंग्स में ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। जो नहीं है उसका इजहार करूं कि मेरे पास है, ये मुनाफिकत है। इंसान को नहीं करना है ये चैप्टर खुदा तआला ने बंद किया हुआ है हमारे लिए। तो बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि हम लोग इस मुनाफिकत में फंसने पर मजबूर हुए हुए बाज़ औक़ात। अपने तौर पर हम अपने आप को माफ कर रहे हैं ये कह के कि हम मजबूर हो गए इसमें फंसने पर। कोई मजबूरी नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है। मुनाफिकत ना आने दें, आप जितना हैं उतने का भी इजहार ना फरमाएं, लेकिन उससे बढ़कर का तो कतन इजहार मत करें। जो नहीं है वो क्यों दिखा रहे हैं? जितनी इबादत गुजार नहीं है उससे बढ़ के क्यों दिखा रहे हैं? जितना है वो भी दिखाएं तो रियाकारी है, और जो नहीं है वो दिखाएं तो वो तो मुनाफिकत है, असलन वो गलत है बिल्कुल। तो आप क्यों अपने आप को मुब्तला करेंगे इसके अंदर? अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाइए और अपने इजहार को कम से कम करते चले जाइए, आपकी जिंदगी आसान रहेगी। मैं हमेशा इस बात को अर्ज करता हूं कि एक गाड़ी के ऊपर, एक इंजन के ऊपर दो गाड़ियां नहीं चल सकती है। और अगर आप एक रूह के ऊपर दो शख्सियतें चलाएंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक अंदर और एक बाहर, ये मत करें, आपके लिए मुसीबत है ये। दूसरी बात जो मुझे बहुत तजर्बे से समझ में आती है, थोड़ा बहुत जो हमने यहाँ पे तजर्बा कर लिया उससे समझ में आती है कि जो माशरे के अंदर हमारा असर रसूख, हमारे मतलब वो लोग जो दीन के नाम से मशहूर हैं या दीन के नाम पे काम करना चाहते हैं, उनके तरक्की में, उनकी उनकी मजीद कामयाबी में एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। हम लोग किसी भी बहाने से बुनियादी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई बहाना हमारे जहन में आता है, कोई उज्र हमारे जहन में आता है, उज्र नहीं होता, उसे बहाना होता है। उस बहाने को उज्र बनाते हैं, कुछ तावील करते हैं, कुछ अपने आप को मुतमईन करते हैं और बुनियादी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इस मुसीबत से अपने आप को किसी तरह निकाल लें। बुनियादी उसूल से मेरा मतलब क्या है? भाई आपको सच बोलना है। आया दीन इस्लाम में झूठ कहीं बुनियादी तौर पे तो अलाउ नहीं है। कोई झूठ होगा जिसके अंदर कत्ल नफ्स मुलव्विस होगा कि अगर आपने सच बोल दिया तो कत्ल हो जाएगा कोई बंदा, किसी की नफ्स की पामाली हो जाएगी, उसके लिए अमीर मोमिनीन फरमाया तौरिया कर लो, किसी की जान बचाने के लिए। आप अपनी जबान से झूठ कैसे जारी होने दें? इसके लिए कोई उज्र काबिल कबूल उज्र नहीं है, इसे बहाना है, कोई उज्र नहीं है। या मिसाल के तौर पर दीन इस्लाम के अंदर वादे की वफा एक चैप्टर है, इसके बगैर कोई दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। आप वादे की वफा को अहमियत ना दें, किसी भी उज्र किसी भी बहाने से कैसे हो सकता है, फिर दीन कैसे बढ़ सकता है? हमारी जो पाकिस्तान में मुश्किलात में से एक मुश्किल है, बहुत सारी जगहों पर और भी है, हमारे भी ये मुश्किल है, वो ये है कि हमारे पास दीन की कुछ फुरुआत हैं जो उसूल से आगे बढ़ गए, और कुछ उसूल हैं जो फुरू से भी कम अहमियत हो गए। वो उसूल जो फुरू से भी कम अहमियत हो गए उनमें से एक सच है, ये असल इस्लामी है, असल दीन है, ये फुरू से भी कम हो गया है। वादे की वफा है, अमानतदारी है, अहदो पैमान है। कितने आपने हलफ बदारी की तकारीब देखी होंगी, आपने यकीन अपनी जिंदगी में देखी होंगी ना हलफ बदारी की तकारीब, इसमें हम एक पेपर लेते हैं, कहते हैं मैं फना इब्ने फना या मसा फना बिनते फना फना फना, ये मैं इस पर इमाम वक्त को अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूं या कहती हूं, और फना फना ये सब काम किए। आपने हलफ बदारी की तकारीब देखी है ना अपनी जिंदगी के अंदर? ये अहद नहीं है, ये अहद है, ये पैमान है। अच्छा इसको तोड़ना लोगे मुश्किल है क्या? खड़े खड़े तोड़ देंगे। आप कितनी दफा देखेंगे कोई एक आदमी किसी तंजीम के लिए किसी इदारे के लिए एक अहद उठाता है, उसमें लिखा होगा मैं इसके कवानीन की पासदारी करूंगा। अच्छा इससे कोई पूछे तुमने पढ़ा है इसके कवानीन क्या है? नहीं, कहते बाद में पढ़ लूंगा। तुमने बगैर पढ़े ये वादा कैसे किया कि इसकी पासदारी करूंगा? अच्छा मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए उसकी कवानीन में लिखा है हर 3 महीने पर मीटिंग में शिरकत करूंगा, है तो डाल देता है हाँ करूंगा पासदारी करूंगा, करेगा शिरकत? पहले से सोचे बैठा है कि नहीं मौका मिला तो करूंगा वरना नहीं करूंगा? अहद क्यों उठाया फिर, वादा क्यों किया? इस वजह से दीन तरक्की नहीं करेगा। भाई आप ये असल इस्लामी है, असल दीनदारी दयानतदारी इसी के ऊपर है कि भाई आप वादे की वफा करेंगे। मतलब किसी ने रिवायत में मुझे याद आता है पूछा कि भाई जो जो अल्लाह की जो वादे की वफा नहीं करेगा, फरमाया उसका दीन नहीं है। ला दीना लमन ला अहदला, जिसका जिसका अहद व पैमान नहीं है, जिसके पास अहद व पैमान की वफादारी नहीं है, उसका दीन नहीं है। तो पूछा कि भाई ये क्यों, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो क्या दीन नहीं है? फरमाया नहीं, नमाज नहीं पढ़ता तब भी दीन बाकी रह सकता है, लेकिन अहद व पैमान की वफादारी ना करे इसका दीन नहीं है। फरमाया क्यों? कहा इस वजह से कि जो बंदों के साथ अहद व पैमान पूरा नहीं कर रहा वो खुदा के साथ वादे कैसे पूरे करेगा? जब आप मुमकिन है कहेंगे नहीं खुदा तो बड़ा है, जाहिर है उसके साथ वादे को पूरा करेगा। नहीं वहां मुश्किल है, बंदे के साथ वादा पूरा नहीं करता, बंदा सामने खड़ा हो जाता है वादा पूरा करवाने के लिए। खुदा के साथ वादा पूरा नहीं करता तो खुदा क्या करता है? खुदा सामने नहीं खड़ा होता, खुदा कहता है मैं कयामत के दिन पूछूंगा, तो ये समझता है मुझे रस्सी ढीली मिल गई है। लिहाजा बंदों के साथ तो शायद वादा वफा कर ले, अल्लाह के साथ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह सामने आके नहीं पूछेगा कि तुमने वादा वफा किया है नहीं किया, बंदा तो सामने खड़ा होकर पूछेगा। तो अगर कोई बंदों के साथ वादे वफा नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह के साथ तो खत्म नहीं करेगा फिर, ये कैसे करेगा फिर ये? अब आपको और हमें जिम्मेदार करार दिया गया है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आप कभी अहद उठाएं कोई हलफ उठाएं कम से कम ये सोचकर उठाएं आपने पूरा करना है इसे। और मुझे यकीन हो गया है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ हमारे माशरे में दीन तरक्की नहीं करेगा, हम लोग मुश्किल में मुब्तला रहेंगे। और जिस दिन ये हासिल हो गया कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि अगर हमने कहीं वादा कर लिया है तो पूरा हो जाएगा, फिर आधी से ज्यादा मुश्किलात हमारी हल हो जाएंगी। सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें जो बड़ा काम बन जाता है बाद में, वो एक अपने वादे की वफा करें। اپنے عہد پیمان کو اہمیت دینا شروع کر دیں. آپ کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ہونا چاہیے. اچھا, اس کا ماہ مبارک رمضان سے کیا تعلق ہے؟ بہت آسان ہے. آپ اپنے اوپر یہ گرفت کرنا شروع کر دیں, 30 دن کے اندر کتنے وعدے کیے ہیں, 30 دن میں پورے کیے یا نہیں کیے, یہیں سے شروع کر لیں. مثلا فرض فرمائیے پہلی ماہ مبارک رمضان آئی, اگر آپ بہت منظم ہیں اور آپ کے پاس کوئی ڈائری وغیرہ بھی ہوتی ہے اور آپ دن کا کہیں لکھنے کے موڈ میں بھی ہیں, یا نہیں بھی ہوتی ڈائری, آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے, پہلی مبارک رمضان نوٹ کیجئے آپ نے پورے دن میں کتنے وعدے کیے ہیں, لکھنے میں نے یہ وعدے کیے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ پر گرفت کریں یہ وعدے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. حتیٰ جو وعدے آپ نے بچوں سے کیے ہیں, بہترین جگہ جو خدا سے وعدے کے مثال میں پیش کی جا سکتی ہے وہ بچوں سے کیے ہوئے وعدے ہیں. کیوں؟ آپ اپنے پرنسپل سے ایک وعدہ کریں اور پورا نہ کریں, آپ باہر ہیں, پھر آپ کو پکڑ لے گا, باہر کر لے گا. آپ اپنے باس سے ایک وعدہ کریں پورا نہ کریں, آپ کی تنخواہ کم کرے گا. اگر آپ نے بچے سے ایک وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا, وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں, زیادہ زیادہ کیا کہ ہم آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ کے پاس ہے کہ آپ ایک تھپڑ مار دیجیے, کہہ دیجیے آپ پوری نہیں کر رہے, ختم. آپ کہہ دیجیے جواب نہیں کر رہے, طاقت ہے نا آپ کے پاس. اس کا مقابلہ رکھیے گا خدا سے وعدے پر. آپ بچوں سے کیے وعدے کو پورا کر رہے ہیں کیا؟ اچھا آپ کہیں گے ہاں مسلسل کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا بہت آسان کام یہ ہوتا ہے, کسی تھرڈ پرسن کو اپنے بچوں کے پاس بھیجیے گا اور اس سے پوچھوائیے گا کہ ماما جو وعدے کرتی ہیں پورا کرتی ہیں کیا, وہ سچائی میں بتائے گا. البتہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ نے بھیجا, ورنہ وہ بھی مکاری دکھا دے گا, وہ بھی سیاست دکھا دے گا, کیونکہ ہم نے بچوں کو سیاست سکھائی ہوتی ہے نا, مکاری ہم نے بچوں کو سکھائی ہوتی ہے, بےچارے سیکھ کے نہیں آتے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر ٹریننگ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں مکاری سکھانے کے, اس میں بچوں کو مکاریاں سکھاتے ہیں, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے, کس سے کہنا ہے کس سے نہیں کہنا ہے, وہ بچے ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ اس سے ٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ وعدے کو وفا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اپنے بارے میں ان سے ججمنٹ کروائیں. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوگا ہم بھول جائیں گے دماغ میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں لکھ لیں, کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں لکھنا شروع کر دیں آپ نے کسی وعدہ کیا ہے نہیں کیا, جو وعدے کیے پورے کیے ہیں نہیں کیے. انسان وعدہ نہ کرے پھر جو اس نے پورا نہیں کرنا. اچھا آپ ممکن ہے سوچیں میں اتنا منٹ اس کے اوپر لیے کیوں لیے, مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے جب تک یہ پورا نہیں ہوگا ہماری دینداری آگے نہیں بڑھے گی. ہم معاشرے میں اگر میں کہوں کہ حقیر ہوتے رہیں گے, ہم حقیر ہوتے رہیں گے. معاشرے میں عزت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں وعدے کو وفا کرنا پڑے گا. یہ دنیا کا راستہ ہے, یہی آخرت کا بھی راستہ ہے. لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اوپر گرفت کر لیں جو آپ وعدے کر رہے ہیں, خاص کر ان انسانوں سے جو کمزور انسان ہیں, جو آپ کے مقابلے میں کہیں حساب کتاب نہیں لے سکتے, ان وعدوں کو آپ پورا کرنا شروع کر دیجئے. اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیونٹ کوئی سوال ہو, فقہی مسائل مت پوچھے گا, اس جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سے ریلیونٹ کچھ مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے, اس سے مربوط کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے, تو اس کو آپ بیان کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ جو چند منٹس ہمارے پاس ہیں اس میں اس کا کوئی جواب دے سکوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل. جی فرمائیے گا. دوسرا سوال کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ, شاید میں دوسرے سوال پہ زیادہ توجہ دے گیا, لہذا میں دوسرا پہلے جواب دے دیتا ہوں پھر میں پہلے پہ آ جاتا ہوں. صحیح, یہاں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے عبادات کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, کیا ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی ایسا نہیں ہے؟ ایکچولی اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک عمومی حسن ظن ہے, جو وہ رکھے تو اچھائی پھیلے گی, کوئی غلطی نہیں آئے گی. مثال کے طور پر اس نے ظن رکھا ہے کہ چونکہ آپ دینی طالبہ ہیں, آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں, آپ انشاءاللہ نماز شب بھی پڑھتی ہوں گی, آپ انشاءاللہ قرآن کریم بھی روزانہ پڑھیں, ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی حسن زن ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں آئے گی معاشرے کے اندر. ایک دفعہ اس نے سوچ لیا چونکہ آپ دینی طالبہ ہیں، آپ مجلس پڑھتے ہیں تو لوگ مسائل پہ بہت روتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ امام زمانہ سے بھی ملتی ہوں گی، اس سے مسائل آ سکتے ہیں. اس قسم کے حسن زن کا فوراً مقابلہ کر، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو صاف پتہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، عبادت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے جو سب کرتے ہیں وہ بھی ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کوئی حسن زن بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو فوراً روکیں، اس کا چیپٹر کا مقابلہ کریں، نہیں ایسے نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات بڑے بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں، وہ اس حسن زن میں آپ کو پیروں کے مقام تک پہنچا دے، مقابلہ کریں اس کا، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کیا تم نے سوچنا شروع کر دیا، تھوڑا سا اس کو نیچے لے کر آئیں. اس میں بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، ان لطیفوں کا مقابلہ کریں. لطیفے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ مثلا آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، واقعات ماحول کچھ ایسے پیش آئے، آپ نے کوئی بات کہی وہ پوری ہو گئی. سامنے والے جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت عجیب ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس نے فلاں بات کہی تھی نا وہ ہو گئی، اور اس کے بعد پتا چلے کہ ایک چیپٹر آپ کو پتا ہے کہ خرابی کا کھلنے والا ہے، یہاں پہ آپ مقابلہ کریں، ورنہ ضروری نہیں ہے. اگر عمومی طور پر ایک حسن زن ہے کہ مثال کے طور پر جو عمومی عبادات کے سلسلے میں ہے، عمومی طور پر لوگوں کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا ہے اس کو آپ نہ انکار کریں نہ اقرار کریں، سب بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی خرابی آنے والی ہے اس خرابی کا مقابلہ کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ معاشرے کے اندر سرایت کر جائے. پہلی بات کیا تھی آپ کی؟ ہاں، ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، کہ اس کے مقابلے میں بھی اپنی نیکی کا اظہار کرنا چاہیے. میں پھر دوبارہ یہ سوچوں گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، معاملہ میرا معاملہ ہے. مثلا اس نے میرے اوپر کوئی الزام لگایا ہے، معاشرے کے اندر اور کوئی خرابی نہیں آئے گی، چھوڑ سکتے ہیں، جانے دیں. آپ کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے نا، خدا نبٹ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، مثلا آپ کہیں گے بھائی میرا دل چاہ رہا کہ اس کو جواب دوں گے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، مثلا میں اتنا جاہل نہیں ہوں جو تم نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو جانے دیں، اس معاملے میں مت پڑے. اچھا، مجھے ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ جتنا آپ اپنی شخصیت کا دفاع نہیں کریں گے خدا کرے گا، خدا بچائے گا. اچھا، جتنا آپ اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے اور خاص کر ممبر کو استعمال کریں گے، اب بہت خراب ہوگا. آپ اپنی شخصیت کے دفاع میں عزاداری کو استعمال مت کیجیے گا، جانے دیں، ہو جائے جو کچھ ہونا ہے. یہ جو عزاداری کا چیپٹر ہے نا، اس کو اپنی ذاتیات کے لیے کبھی استعمال مت کریں. آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے نا، جب آپ ظاہر بول رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک موقع ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی مت بولیں، ورنہ آپ مصیبت میں پھنسیں گے بعد میں، کیونکہ آپ نے اس جگہ کو استعمال کر لیا جو آپ کے لیے نہیں بنی تھی. آپ اس غلطی کو مت کریں. اگر اپنا معاملہ ہے جانے دیں. ہاں، ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک الزام لگاتا ہے سارے علماء پر، ساری دینی کلاس کے اوپر. وہاں بجائے یہ کہ آپ اپنی کوئی فضیلت بیان کر کے دفاع کریں، دوسروں کی فضیلت بیان کر کے اس کا دفاع کریں. اپنی فضیلت بیان کرنے کو تھوڑا سا کم کریں، اس میں بہت نقصانات ہیں آپ کے اپنے لیے بھی کہ میں شیطان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. محمد والے محمد واجل فرق لکھے. اپنی ہمت کے مطابق جہاں تک ہو سکتا ہے عبادت اور دعائیں کرتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. اچھا، کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ ایک دفعہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا نے متعال کی ایک عظمت ہے، ظاہر ہے اس کے مقابلے میں ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ کم ہے، تو یہ پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیو ہے کہ انسان. اچھا، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے کر لیا ہے، یہ ثابت ہے کیا؟ یہ کہاں سے پتا چلا کہ جہاں تک ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا ہے؟ نہیں، ممکن ہے اس سے بہتر ہو سکتا. میں یہ سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے کر لیا ہے. بس اگر ایسا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کر لیا ہے اور پھر دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے پازیٹیو ہے کہ اللہ کا راستہ وسیع ہے اور ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ کم ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہے. ہاں، ممکن ہے یہ سمجھ میں آئے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. میں ایک شہر میں تھا، وہاں پہ ایک صاحبہ نے ایسا ہی کچھ لکھ کے بھیجا کہ جو دین میں تھا وہ سب ہم نے کر لیا، اب بتائیں کیا بچا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ابھی کچھ بھی انجام نہیں دیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کچھ بھی انجام دیا ہوتا تو اتنی ایروگینس، اتنی جہالت نہیں آ جانی چاہیے تھی. اس تو پتا ہوتا آپ کو کہ ابھی دین بہت وسیع ہے، ये मुश्किल उस वक्त आ सकती है जब हमें नहीं पता हो, और अगर इन्होंने कहा कि हम कोई दीनी अमल अंजाम दें, इबादत अंजाम दें इस नियत के साथ कि खुदा हमसे खुश होगा और उसके नतीजे में हमारे अंदर कोई रूहानियत आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी है। एक दफा ये होता है कि मैंने कोई दीनी अमल अंजाम दिया, कोई इबादत अंजाम दी, उसके नतीजे में खुदा मुझसे खुश होगा, साइड में ये भी हो जाएगा, ये मेरा हदफ नहीं है। बाद अवकात शैतान शिर्क यहां से डालता है कि उसे हदफ बना देता है, खुदा को पीछे डाल देता है। मसलन मैंने आपकी खिदमत में दुआ नमाज गुफैला के लिए अर्ज किया, अब कोई गुफैला इसलिए पढ़ेगी मुझे मुआवजे करने हैं, ये भी शिर्क है। खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं, खुदा से जो मिलना है उसके लिए कर रहे हैं। एक लतीफ नुक्ता इसमें कहते हैं कोई फकीर जब किसी से पैसे लेता है तो एक फकीर ये देखता है कि मैंने कितने पैसे लिए, और एक फकीर ये देखता है मैंने किससे लिए हैं, ये नहीं देखता कि क्या लिया है। आपको और मुझे वो फकीर होना चाहिए जो ये ना देखे कि मैंने कितने सिक्के लिए हैं, ये देखे कि मैंने किससे लिए हैं, उस पे गौर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये क्या दुनियावी तालीम को दीन के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? आपकी सलाहियत है, दीनी दुनियावी तालीम भी एक सलाहियत है। जैसे आप अपने बोलने की ताकत को दीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने की ताकत को, मुख्तलिफ किस्म के हुनर को आप दीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किल्स को, इस तरह दुनियावी तालीम भी एक स्किल है, एक महारत है आपके पास, इसको आप देख सकते हैं कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मुझे याद है बहुत तफसीली भी कभी बातचीत हुई है। बहुत सारे इम्कान हो सकते हैं, उसको आप देखना पड़ेगा मुख्तलिफ जगहों पर। देखा है कभी हम कम बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं कहीं कोई गुना सरजद ना हो, लेकिन अगर लोग बुरा माने तो हम क्या करें, जबकि हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है। मसलन लोग किस बात पे बुरा माने कि हम नहीं बोले तो लोग बुरा माने, ठीक है? अल्लाह आपको ऐसा मकाम नसीब फरमाए इंशाअल्लाह जिससे आपके बोलने पे लोग खुश हो रहे हो, और अगर ना बोले तो बुरा मानते हो, तो उस मौके पे कर लें कम बोलने पे इक्तफा कर लें, कम बोलने पे इक्तफा कर लें, अपने बारे में ना बोलें, दूसरों के बारे में बोल लें और दीन के बारे में बोल लें, ताकि ये बोलना आपके अपने लिए ना हो बल्कि एक आध अपनी बुराई भी कर डालें, अपनी मजम्मत के लिए भी एक दो जुमले बोल दें, ताकि ये तो मैंने आपकी खदमत दर्ज किया अपनी मजम्मत के लिए। जाहिर है हम छोटे लोग अगर ये बात करें तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे अच्छा इसके पीछे हदफ ये है कि अपनी बड़ाई करना चाहता है, लेकिन बाज बहुत बड़े लोग बाज औकात ये काम कर लेते थे, वो अच्छे भी लगते हैं अलबत्ता, मेरे जैसे आदमी आप जैसे लोग करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाज बहुत बड़े लोग इस किस्म के काम करते हैं। मसलन एक प्रोग्राम, एक किताब में शेख मुतहरी की कोई तकरीर थी जिसको स्क्रिप्ट बनाया गया था, किताब बनाई गई थी, उसमें लिखा था शेख मुतहरी ने तकरीर के दौरान कहा कि जब मैं बुलाया जा रहा था तो पता नहीं उनके लिए कहा गया था फख्र इस्लाम, पता नहीं क्या फख्र तशय्यो और ये कह के उनको बुलाया, तो उस पर उन्होंने कमेंट्स किए थे, कहने कि तशय्यो बहुत गरीब हो जाएगी अगर मैं उसके लिए फख्र का सबब बना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं तशय्यो के लिए फख्र का सबब बन जाऊँ। तशय्यो के लिए फख्र का सबब मिसाल के तौर पर शेख तूसी हैं, हसन अल्लामा हिल्ली हैं, वो लोग हैं जिन्होंने वाकई दीन के लिए सख्त औकात में खिदमत की है, जान कुर्बान की हैं, सब कुछ किया है, और अलबत्ता बरेसगीर टाइटल देने में बहुत माहिर है, बरेसगीर भर भर के टाइटल देता है, इन टाइटल्स का मुकाबला करेंगे इस तरीके से कि आपको इतने बड़े बड़े टाइटल्स ना लगें, और टाइटल्स लगने भी लगें तो रोकें उसको, फौरन मुकाबला करके रोक लें कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, क्यों बिलाजे में काम। एक और ट्रेंड शुरू हो गया है, पता नहीं खवातीन में अभी आया नहीं आया, वेस्ट में बहुत ज्यादा शुरू हो गया है कि जिस कोई भी तकरीर करने वाला होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट के साथ उसकी तस्वीरें लगना शुरू हो गई हैं, खूबसूरत सी एक तस्वीर लगाएंगे, जैसे फला आलिम दीन अशरा पढ़ेंगे तो उसके साथ तस्वीर लगी होगी उनकी, कलरफुल तस्वीरें बड़े खूबसूरत कागजों वगैरह के ऊपर छपने लगी हैं, तो वो पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा जैसे मजलिस का नहीं है एड, ये किसी शो का एड है, कि पता नहीं किसी नाउज़ुबिल्लाह कोई स्टेज शो होने वाले नाउज़ुबिल्लाह जिसमें एक्टर्स के ऐड दिए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये तस्वीर क्यों लगाते हो, क्या ताकि लोग पहचाने? मैंने कहा भाई जो आदमी वहां बैठकर मेरा नाम नहीं जान पाया है वो मेरी तस्वीर कहाँ जानता होगा। मतलब आप लंदन में ऐड लगा रहे हो और कह रहे हो चूंकि लोग आपको नहीं जानते यहाँ पर तो हम ये ऐड लगा रहे हैं, लॉजिक यही हुई ना, तो भाई ये ऐड लगा रहे हो, जो आदमी वहां मेरा नाम नहीं जानता उसको मेरी तस्वीर कहाँ से पता चलेगी, ये आदमी कौन है? अच्छा, अगर वो तस्वीर देखकर मेरी आएगा तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो तस्वीर देख के आने का फायदा क्या है फिर? क्या हमने तस्वीर से कुछ दिखाना है? स्टेज शो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? पर मुझे समझ में नहीं आई ये बात, आपसे भी अर्ज करूंगा, टाइटल्स का मुकाबला करें, गलत चीजों का ऐसा मुकाबला करें। ठीक है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, उसे एहसास हो जाए कि हमने उस इंसान से कुछ ज्यादा बोल दिया और हम माफी मांगने जाएं और वो ना मिले, कमरा बंद करके बैठ जाएं, अब ये पूरी स्क्रिप्ट है ना, पूरे ड्रामे का एक पूरा एक सीन है, ठीक है, 2-3 घंटे बैठकर वापस आ जाएं और वो कहें कि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, कहीं वो सामने वाला यहीं तो नहीं बैठा हुआ? क्योंकि मामूलन ऐसा होने लगा है अब कि हम बार बार उससे माफी मांगे, ये समझे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपको खुद पता चल जाएगा। असल में ये जो इतने ज्यादा जैसे कहते हैं ना स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, बहुत खास, इतने ज्यादा खास जो इन्होंने सारे डिटेल्स बताई, आप खुद समझ रहे हैं इसमें बताने वाला अपनी साइड बता रहा है या दूसरे की साइड बता रहा है? एक साइड बता रहा है, ये नहीं बता रहा पीछे क्या हुआ है आगे क्या हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पे कहूं नहीं इतना काफी है, आप इससे बात तवज्जो ना फरमाएं, मुझे नहीं मालूम मैंने उस सामने वाले की क्या हक तलफी की, अब मुझे क्या पता वो स्टोरी का दूसरा वाला पीस क्या है, उसमें क्या हुआ था, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं जो इन्होंने ना लिखी हो, बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं जो मैं अभी सोच रहा हूं कि इन्होंने नहीं लिखी, वाकई हो ही नहीं असल, जो इन्होंने लिखा वो 100% सही हो, ठीक है, लेकिन मेरे सामने एक रिस्क है ना बहरहाल, कि अगर मैं कहूं नहीं इतना काफी है, मुमकिन उन्होंने वो डिटेल्स नहीं बताई और उसका कोई हक पामाल होगा फिर मेरे नाम पर, और हत्ता अगर वो जाके कोर्ट भी करते कि मैंने तुम्हारा केस मौलाना साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा तुम्हारा कोई हक नहीं बचा, लोग मैं बिलाजान बीच में फंसू, तो मैं इसमें ऐसे मौके पर ये कहूंगा कि जो ये लिखा है उसके हिसाब से तो काफी लग रहा है, लेकिन अगर डिटेल्स और हैं उसके हिसाब से फिर हुक्म मुख्तलिफ होगा। लिखा है कि जैसा कि आपने फरमाया कि खुदा की इताअत इसलिए छोड़ दी कि हमें दुनियावी कामयाबी मिल जाए, इससे जिल्लत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, मगर हम आज अपने माशरे में देखते हैं कि जो जितना ज्यादा करप्ट है और करप्शन कर रहा है वो इतना ही इज्जतदार कहलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंतिक है? क्योंकि दुनिया दुनिया परस्तों की है, दुनिया मक्कारों की है, दुनिया माजरत के साथ जलीलों की है, और एक जलील को जलीलों के दरमियान इज्जतदार ही कहलाया जाना चाहिए। ये एक जलील आदमी है, इसने पस्ती की एक हरकत की है, जिल्लत दिखाई है, ये जिल्लत दिखाकर किसके दरमियान मशहूर हो गया इज्जतदार? जिल्लतदारों के दरमियान जिनके अंदर खुद इज्जत नहीं है। ठीक है, अब एक बात सोचनी पड़ेगी, अगर हम वाकई दीन की खातिर काम कर रहे हैं तो क्या इस पर सब्र कर लेंगे? इतनी हमें ताकत है कि दुनिया के दुनिया परस्त हमें इज्जत ना दें, इस पर सब्र करेंगे हम? हमारी ख्वाहिश क्या होती है? मैं दीन के लिए करूं लेकिन दुनिया परस्त भी मेरी इज्जत करें, ये बेबुनियाद बात है। अगर आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं तो आप दुनिया परस्तों से इज्जत क्यों लेना चाहते हैं? आप चाहिए इज्जतदारों से इज्जत लें, अल्लाह से इज्जत लें, मोमिन अल्लाह के रसूल से इज्जत लें, अल्लाह के निजाम से इज्जत लें, हुज्जत खुदा से इज्जत लें, आप दुनिया परस्तों से क्यों इज्जत लेना चाहते हैं? लेकिन हमारे दिल में वो जो दुनिया की जड़ है वो हमसे क्या मांगती रहती है? दुनियादारों से भी इज्जत मिलनी चाहिए, इनको भी तो पता चले कि हमने क्या किया है। नहीं, ये मुश्किल है, ये हमारी मुश्किल है, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अपनी गलतियों या कोताहियों को मालूम करने का कोई तरीका बताएं, कोई तरीका है? इन्होंने लिखा है, बिल्कुल है तरीका। एक तो एक इंसान, मैंने 3 स्टेज में हम बना सकते हैं, एक तो एक नसीहत करने वाला कोई मिल जाए ना से, वो नसीहत करने वाला सच्चे दिल से बता दे भाई तुम्हारे अंदर ये खराबी है। अल मोमिनो मिरआतुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए मिरआत होता है, अलबत्ता ये जो मिरआत होता है ये दूसरों का चेहरा नहीं दिखाता, पहले क्या करता है? अपने चेहरे को देखता है, पहले अपने चेहरे को देखता है। बस एक नासेह मिल जाए, दूसरा काम इंसान खुद अपने ऊपर चेक करे, अपने ऊपर खुद गिरफ्त करे, ये जो काम मैंने दूसरों के साथ किया अगर दूसरे मेरे साथ ये करते तो क्या था, फिर मुझे कैसा लगता? दूसरा काम हो गया। तीसरा एक और काम हो सकता है, आपके अतराफ में यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे मुखलिस होंगे, कुछ होंगे, 1, 2, 4, 10 जितने भी आपको खुदा ने तौफीक दे दी, उनसे पूछें मेरे अंदर कौन सी ऐसी बुराई है जो ना होती तो तुम्हें अच्छा लगता, उनसे पूछें, जुरात दिखाएं। मसलन फर्ज करें ऐसी, आपकी वालदा आपसे सिंसियर है, बहुत आप जाके उनसे पूछे मेरे अंदर कोई बुराई है जो ना होती तो आपको ज्यादा अच्छा लगता, मालूम करें। आप अपने किसी और नजदीकी दोस्त से पूछे मेरी कौन सी बुराई है जो ना होती तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है, तो वो आपको बताए कि तुम्हारे अंदर ये बुराई ना हो तो बेहतर होगा। अलबत्त ऐसे से पूछेगा जो खुदा वाले, खुदा की तरफ थोड़ा माइल हो, वरना बाज लोग खुदा की तरफ माइल नहीं होते, खुद दुनिया परस्त होते हैं, तो फिर वो आपको अच्छा मशवरा नहीं देंगे, तो मुसीबत में डाल देंगे। देखिए अगर हमारे बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर भी खामोश रहें, क्योंकि टोकने पर जबान चलाते हैं, इसका जवाब देना चाहिए नहीं, खामोशी करनी चाहिए। वो बहुत मशहूर एक हदीस है, ये मैं कभी कभी अपने घर वालों से भी कह देता हूं, उस हदीस में लिखा था रुब्बा सवाल इन जवाब जवाब हु असकूत, कितने ही सवाल ऐसे होते हैं जिनका बेहतरीन जवाब क्या होता है, खामोशी। तो मैं अपनी बेगम साहबा से बहुत सारा दफा यही कह देता हूँ, वो पूछती हैं इसका क्या होगा, तो मैं कहता हूँ रुब्बा सवाल इन जवाब हुआ बस सुकून, खामोशी इख्तियार करना बेहतर है, तो उसमें बहुत सारी चीजें बच जाती हैं। ये भी ऐसा ही है, इसमें बोलने में फायदा नहीं होगा मुझे। खैर लिखा है उमूमन लोग किसी भी छोटी गलती का तमाम जिम्मेदार दीनी मदारिस को कहते हैं कि मदारिस में यही सब कुछ सिखाया जा रहा है, कि इस मौके पर भी खामोश रहा जाए। इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि अगर कोई दीन के नाम पर मसलन दीनदारी के नाम पर एतराज करता है उसका जवाब दिया जाए, लेकिन अपनी फजीलत बयान करके नहीं, दूसरों की अच्छाई बयान करके, ठीक है। हाँ बिल्कुल बयान किया जाए। अक्सर ये ख्याल आता है कि जवानी की उम्र में दीन की बहुत सी खिदमतें अंजाम दी जा रही हैं और दीनी उलूम भी हासिल किए जा रहे हैं, इससे अक्सर लोगों की दाद भी मौसूल होती है, ऐसा ख्याल करना दुरुस्त है, इससे खुशी महसूस होती है। एक दफा होता है इंसान अल्लाह की बंदगी करता है, उसके ऊपर खुश होता है कि मैंने खुदा की बंदगी की, ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उसने एक कामयाबी हासिल की, अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट पर खुश होता है। लेकिन मुश्किल सारी ये है कि शैतान बहुत ज्यादा मक्कार है, शैतान बहुत मक्कार है, तो वो ये जो खुशी का एहसास है ये आहिस्ता आहिस्ता अनापसंदी में तब्दील होता है, फिर ये अनापसंदी का एहसास थोड़ा थोड़ा सा तकब्बुर के अंदर तब्दील होता है, और आखिर में इंसान ठीक ठाक मुतकब्बिर हो चुका होता है और उसे पता नहीं होता। इसलिए जहां कहीं ऐसी खुशी का एक एहसास आए, अपनी कोई गलती को सोचकर उस पर नदामत का एहसास भी कर ले कि ठीक है मैंने अच्छा काम किया, लेकिन ये भी जहन में रहे कि मैंने गलतियां क्या क्या की हैं, ठीक है, आपने दीन के नाम पे एक तबलीग की है, जहन में ये भी रहे कि आपने कितनी जगहों पे गलतियां भी की हैं, उन गलतियों का भी हिसाब होना है खुदा के सामने, बहुत कुछ होना है। आप लोगों से इल्तिमास से दुआ है, इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए और दूसरों के लिए ज्यादा दुआ कीजिएगा, ताकि इंशाअल्लाह खुदा मुताल आपकी और हमारी दुआओं को इस माह मुबारक रमजान के अंदर कबूल फरमाए। सबसे ज्यादा दुआएं वक्त के इमाम के लिए करें, उनकी नुसरत के लिए, उनकी तशरीफ़ावरी के लिए और उनकी राह में खिदमतों की अंजाम दही के लिए, इंशाअल्लाह वक्त के इमाम के हुजूर अदाए एहतराम के लिए दुरूद भेजें।